ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा।
100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनटीपीसी के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उसे वर्तमान दिशा निर्देशों से छूट देने को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि अब एनटीपीसी अपनी सहयोगी इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश कर सकेगी।
एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में, एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना करता है जिनके अथक प्रयासों से ये उपलब्धि संभव हो पाई है।
आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को शामिल करते हुए 20 नई बटालियन बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जापान के टोक्यो में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की और इंडिया ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया। ये मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से सीधे जुड़ने के सबसे बड़े मंचों में से एक है और इससे द्विपक्षीय कपड़ा व्यापार और मजबूत होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के पूर्णिया में एक परिवार के 5 सदस्यों को जादू टोना करने के संदेह में जिंदा जलाकर मार दिए जाने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है। इसके अंतर्गत अमेरिकी कंपनियों को पूर्ण पहुंच के बदले इंडोनेशियाई वस्तुओं पर प्रस्तावित शुल्क घटाकर 19% कर दिया गया। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 63 अंक बढ़त के साथ 82,634 पर बंद हुआ। निफ्टी 16 अंक बढ़कर 25,212 पे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में देश के पूर्वी हिस्सों और मध्य भारत के आसपास बहुत तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। भारत महिला क्रिकेट टीम के साथ पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 22वें ओवर में 4 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।